सिद्धांत जो है उसको तो हम सिद्ध करते करते वहां तक पहुंचेंगे। उसके पहले ये जो कारण कार्य रहस्य समझने जा रहे हैं हम, उसके सबसे शुरुआत की हमारी जो जानकारी आवश्यक है, जिसको हम कहेंगे सर्वज्ञ का स्वरूप का निर्णय करना, सर्वज्ञ की सिद्धि करना, और सर्वज्ञ के स्वरूप के बारे में हमारी जो कोई भ्रांत कल्पनाएं हैं या समाज में भी जो कोई भ्रांतियां चलती है, कोई प्रश्न उसके संदर्भ में उठते हैं, उसके संबंध में सही बात क्या है, उस निर्णय तक पहुंचना, ये सबसे आद्य हमारा कर्तव्य है। क्योंकि जब तक उसकी सिद्धि नहीं होती है तब तक आगे की बातें हमारे कोई कार्यकारी नहीं होती। हमने सर्वज्ञ का स्वरूप भी देखा, उसकी कुछ विशेषताएं भी देखी है, और उसकी सिद्धि चारों ही अनुयोगों के द्वारा कैसे हो सकती है उसके भी बहुत बहुत यहाँ विस्तार में नहीं गए हम, अति संक्षेप में हमने उसकी बातें की है। न्यायशास्त्र के विषय तो आप पढ़ ही रहे हो, उसमें तो सर्वज्ञ की सिद्धि से तो सारे शास्त्र भरे पड़े और आपका उसका अभ्यास भी हो रहा है, तो हम उसको केवल उसके संकेत करते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ हम सर्वज्ञ के बारे में जो कोई भ्रांतियाँ चलती है उसके संदर्भ में कुछ यहाँ विषय वस्तु हमारे सामने है तो उसकी चर्चा करेंगे। देखो ये क्रमबद्ध पर्याय, ये जो कोई वस्तु की व्यवस्था है, ये किस पर्याय का नाम है क्रमबद्ध पर्याय? कौन से पर्याय का नाम क्रमबद्ध पर्याय है? हाँ, ये किसी पर्याय का नाम नहीं है, ये वस्तु की परिणमन व्यवस्था का नाम है। वस्तु व्यवस्था का नाम है क्रमबद्ध पर्याय, किसी एक दो पर्याय की बात नहीं है, ना ही किसी पर्टिकुलर विशिष्ट विशेष द्रव्य की बात है। तो ये जो सिद्धांत तक हम पहुंचेंगे आगे तक, तो उसके बारे में जो लोगों में भ्रांतियां फैल गई है, क्योंकि विरोध के नाम पर हम किसी भी बिंदु को मुख्य करके विरोध फैलाते हैं, ऐसे ही जब कांजी स्वामी ने जैन ग्रंथों का, दिगंबर शास्त्रों का अर्थ खोलकर सामने रख दिया, तो उनके प्रति जिन्हें कुछ विरोध था उन्होंने इस क्रमबद्ध पर्याय का ही विरोध करना शुरू किया। सर्वज्ञ के स्वरूप को सिद्ध करते हैं तो सर्व क्रमबद्ध सिद्ध होता है, क्रमबद्ध को सिद्ध करते हैं तो सर्वज्ञ की सिद्धि होती है, उनका स्वरूप ख्याल में आता है, तो उन्होंने सर्वज्ञ के स्वरूप के बारे में भ्रांतियां फैलाना शुरू कर दी। ऐसे ही कुछ भ्रांतियों को हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन सी भ्रांतियां समाज में चल रही है, और उस पर यहाँ विचार भी करेंगे। देखो 23 पृष्ठ से हम कुछ बिंदु यहाँ देखेंगे, जहाँ एक लिखा है कौन सी भ्रांति है उसको भी देखेंगे और उस संबंधी सही क्या बात है, उसका हम भ्रांति का निराकरण कैसे कर सकते हैं, इसकी भी बात हम देखेंगे। ये तो कहने वाले कहते हैं भ्रांति कल्पना ऐसी है कि जो सर्वज्ञ भगवान सबको जानते हैं, इसे कहा ना, सभी द्रव्यों के, सभी गुणों के, सभी पर्यायों को। सभी पर्यायों में कौन सी पर्याय आई, भूतकाल की के भविष्य काल की, तीनों काल की, तभी तो हम उनको सर्वज्ञ कहेंगे। परंतु कितने ही लोग ऐसे कहते हैं, अरे जो हो चुकी है उसको जानेंगे, वर्तमान को जानेंगे, परंतु जो अभी हुई ही नहीं है, जिसकी विद्यमानता ही नहीं है, उन पर्यायों को सर्वज्ञ नहीं जान सकते, ये ऐसा उनका कथन है। देखो यहाँ लिखा है, देखो इन्वर्टेड में जो लिखा है ना, कॉमा के अंदर जो लिखा है कि जो पर्याय भूतकाल में हो चुकी है और जो वर्तमान में विद्यमान है, वे तो क्रमबद्ध है, वे तो निश्चित है, वो तो अपने निश्चित क्रम के अनुसार हुई है, निश्चित क्रम से और होने योग्य थे वे ही हुई है, उसमें कोई परिवर्तन, कोई हेर फेर नहीं होता, ये तो वो मानने को तैयार है, क्योंकि जो हो चुका है उसमें क्या परिवर्तन होगा, उसको मानने में उनको कोई आपत्ति नजर नहीं आती। और सर्वज्ञ उन्हें एक समय में जानते हैं, यहां तक तो वो कबूल करते हैं, मानते हैं, परंतु भविष्यकालीन पर्याय कैसे निश्चित हो सकती है, इस मान्यता के पीछे प्रयोजन क्या है कि उनकी कर्तृत्व बुद्धि पड़ी है। मैं चाहूं वैसा अपना और पर का परिणमन कर सकता हूं, ऐसी वहां मान्यता पड़ी है, और इसी मिथ्या तो मान्यता के वश वो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह शंका उपस्थित करते हैं कि वो भविष्यकालीन अगर उन्होंने जान लिया तो हम तो पराधीन हो गए, जैसे उन्होंने जाना ऐसे हमको परिणमित होना पड़ेगा, ये बात उनको जचती नहीं, इसलिए उन्होंने सर्वज्ञ के बारे में ही गलत भ्रांतियां मानना और दूसरों को बताना चालू कर दी। तो कहते वे क्रमबद्ध नहीं हो सकती, इसलिए सर्वज्ञ भगवान भविष्य की पर्याय जानते हैं, ऐसा कहना गलत है, ऐसा उनका कहना है। ख्याल में ना, ये पूरी भ्रांति क्या है, यहां चार पांच लाइन में बता दी। अब ये सच है कि खोटी है भ्रांति, हम भ्रांति कह चुके हैं, इसका अर्थ क्या है, ये भ्रम है, ये सही तो नहीं है, फिर भी वो सही नहीं है, ये हमें साबित करना है। तो कहते उनका क्यों ऐसा वो मानते, क्योंकि कुछ कर दिखाने की कर्तृत्व का अभिमान है, अहंकार है। तो देखो हमने द्रव्य को समझाने, कल सुबह में भी बात की थी, द्रव्य तो हम उसी को कहते हैं, किसको, गुण पर्यायवत द्रव्यम, प्रत्येक द्रव्य गुणों का पिंड है और उस प्रत्येक द्रव्य के प्रत्येक गुण की अनादि से अनंत काल की पर्याय सुनिश्चित है। द्रव्य कितना, भगवान ने द्रव्य को कैसा जाना है, एक समय वाला जाना है कि पूरा अनादि अनंत जाना है। हम आपको कहेंगे अपने महात्मा गांधी का चरित्र लिखो, कब से शुरू करेंगे, जन्म से, और कब तक, जब उन्होंने हे राम कहा था तब तक, है ना, जब मर गए तब तक। ऐसे ही द्रव्य को भगवान जान रहे हैं, तो कब से कब तक, मान लेते ये द्रव्य है तो कब से कब तक जानेंगे, यहां तो ये पेन को अंत, आदि भी अंत भी है, परंतु द्रव्य कैसे है, अनादि अनंत। तो उन्होंने द्रव्य को कैसा जाना है, अनादि अनंत ऐसा जाना है, पूरा फैला हुआ जाना है। द्रव्य के जो गुण है उसको हम कहेंगे उसका विस्तार है, एक तो होता है प्रदेशों का विस्तार, और भाव की अपेक्षा विस्तार तो अनंत गुणों का समूह, उसको हम कहेंगे उसको भाव की अपेक्षा विस्तार। और द्रव्य ऐसा ऊर्ध्व भी फैला हुआ है, कैसा, तीन काल में पूरा मिलकर हम उसको द्रव्य कहेंगे, तो द्रव्य में उसकी तीनों काल की पर्याय गर्भित है, तो अनादि से अनंत काल तक की सभी पर्यायों का समूह ही द्रव्य है। तो द्रव्य प्रत्येक समय में अपनी योग्यता से अपनी विशिष्ट परिणाम रूप पे परिणमता है, और भविष्य में भी अपनी योग्यता से ही परिणमेगा, तो किस समय, किस भविष्य में, किस समय वो परिणमेगा, वो निश्चित है। हम और आप किस समय केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, वो सुनिश्चित है, वो अपने अपने द्रव्य की योग्यता से हम प्रकट करेंगे। तो ज्ञान की ऐसी योग्यता है, केवल ज्ञान की, कि उसने सभी द्रव्यों की इन पर्यायों को एक समय में जान लिया है। ये जो होने वाला है वो उस द्रव्य के अपनी योग्यता से होने वाला है। वो होने वाली बात केवल ज्ञानी ने बनाई नहीं है, वो बताई है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं अपने में रहकर वो ज्ञान की ही ऐसी योग्यता है कि वो सब कुछ जान लेते। हम तो अभी मतिशुद्ध ज्ञानी है, परंतु भगवान ने हमें केवल ज्ञानी रूप से जाना है कि नहीं जाना। उनके ज्ञान में ये जीव कब केवल ज्ञान प्राप्त करेगा और अनंत काल तक केवल ज्ञानी रूप से विराजमान होगा, ऐसा जाना है कि नहीं? हर एक जीव की अनादि से अनंत काल की पर्याय उन्होंने जानी है। हर एक परमाणु की अनादि से अनंत काल की पर्याय उन्होंने जानी है। उसमें निश्चित है तभी तो जानी है, क्योंकि वो द्रव्य अपने ही योग्यता से परिणमने वाला है। किसी ने पहले जान लिया इसलिए वो पराधीन हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कुछ चाहता है कि मैं ऐसा ही करूंगा और मैं कहूंगा वैसा हो होगा, ये पेन मैं जब चाहूं तब ऐसा रख सकती, जब चाहूं तब ऐसा, ये जो मैंने माना है और इसका परिणमन मैंने माना है, ये मेरी मान्यता की भूल है। और इसलिए हम सर्वज्ञ के लिए उसकी स्वरूप में विपरीतता पैदा करते हैं, ये बात सही नहीं है। ख्याल में आती है? जैसा जैसा हम द्रव्य गुण पर्यायों का अधिक विस्तार से अभ्यास करेंगे तो ये बातें और गौर से आपके ख्याल में आने वाली है। तो अब हम आगे देखते हैं, ये नीचे उसका उत्तर लिया है, देखो 23 पृष्ठ पर लास्ट पैराग्राफ। वस्तु यानी छहो द्रव्य त्रिकाल विद्यमान रहते हैं। ये द्रव्य कब बने हैं, कब से बने हैं, मैंने क्या पूछा? ये द्रव्य कब से बने हैं, मैंने कहा बने नहीं है, हाँ वो है। कब से है? अनादि से है, 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 है। अनादि यानी कोई शुरुआत नहीं है उसको, जिसको कोई शुरू ही हो, शुरुआत ही नहीं है, उसी को हम अनादि कहते। ऐसा नहीं कि किसी एक विशिष्ट अनादि नाम का कोई पॉइंट है और तब ये बने, ऐसी बात नहीं है। वो है बस, त्रिकाल विद्यमान है, 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 ऐसा कहीं। और कभी उसका अंत भी होने वाला नहीं है, उसकी पर्याय बदलती रहेगी। तो द्रव्य प्रति समय किसी न किसी अवस्था रूप से विद्यमान रहता है। ये जो अवस्था है उसी का दूसरा नाम है पर्याय है, परिणमन है, हालत है, दशा है, उसी को हम कार्य कहेंगे। जब यहाँ कारण और कार्य की व्यवस्था देखने जा रहे हैं, तो जो कार्य जिसको हम कहते हैं, पर्याय को ही कार्य कहते हैं। सिद्धांत प्रवेशिका में आएगी बात, गुणों के विशेष कार्य को यानी परिणमन को पर्याय कहते हैं, हम सीखे ना उसको। तो यहाँ कार्य ने पर्याय जो हर गुण में हर समय में होती है, तो हम अभी द्रव्य की बात करते हैं। तो द्रव्य प्रति समय ने निरंतर प्रत्येक समय में अपनी किसी न किसी अवस्था रूप से विद्यमान है। तो पर्याय तो एक समय मात्र रहती है, पश्चात दूसरी नई पर्याय उत्पन्न होती है। हमने सुबह भी देखा था, केवल ज्ञान है, केवल ज्ञानी ने सब कुछ जान लिया, अब दूसरे समय में क्या जानेगा, ऐसा प्रश्न है ना? क्यों? तो ये ऐसा प्रश्न क्यों उठता है? तो नया केवल ज्ञान है, कुछ नया जानना चाहिए, ऐसी बातें थोड़ी, वैसे के वैसे जाना, वही के वही पर्याय नहीं है। और जानने में जिसको अभी वर्तमान में वर्तमान रूप से जान रहे हैं, जैसे आदिनाथ भगवान ने जब कहा था ये मारीची 24वां तीर्थंकर होने वाला है, कहा था ना, तो उस समय उसको वर्तमान उसकी अवस्था मारीची ऐसा जान रहे थे ना, और उस समय जो जान रहे थे कि ये इसकी भविष्यकालीन अवस्था है। अब इस समय आदिनाथ भगवान उस महावीर के जीव को किस रूप से जान रहे हैं, बोलो? हाँ, उनको सिद्ध रूप से जान रहे। और उस समय अभी भी वो उनकी तीन काल की पर्याय जान रहे, तब भी जान रहे थे, परंतु तब उनके ज्ञान में वर्तमान कौन सा है और भूत भविष्य कौन सा, ये सुनिश्चित था कि नहीं? यानी वो वर्तमान किसको कहेंगे, जो उनकी वर्तमान अवस्था है उसको वर्तमान कहेंगे। आज वो क्या जान रहे हैं, यह जीव पूर्व भव में मारी जी था, फिर बाद में वो कालांतर में महावीर का जीव हो गया, फिर वो अरिहंत हुआ, फिर अभी केवल ज्ञान प्राप्त करके अभी सिद्धालय में अभी सिद्ध रूप से विराजमान है। इतना तो है ना डिफरेंस। तो लोग क्या कहते हैं कि ये वही की वही है क्या, वैसी की वैसी, उसमें क्या डिफरेंस है? जैसे देखो, हर पर्याय नई नई है, अभी हम एक पर्याय समझते हैं। दूसरी पर्याय ये वही है क्या, दूसरी अलग है? ये अलग है, वही नहीं है, वैसी की वैसी है, परंतु हम उसको वही की वही नहीं कहेंगे। ऐसे ही हर समय केवल ज्ञान के भी पर्याय एक समय वाले ही है। किसी भी पर्याय की बात क्यों ना उठाओ, पर्याय तो होती एक समय के लिए ही है, उसका काल ही एक समय का होता है, और फिर दूसरे समय में दूसरी पर्याय आती है। हो सकता है कि वैसी ही हो, जैसे ये माइक जैसे हमने सुबह देखा वैसे अभी दिख रहा है, तो इसमें पर्याय पलटी के नहीं पलटी? क्यों पर्याय उनका परिणमन हो, पर्याय बदली के नहीं, इसकी अवस्थाएं बदली के वही सुबह वाली अवस्था रही, हर समय नहीं हुई। हाँ हम कह सकते हैं वैसी की वैसी, क्योंकि हमारा जितना स्थूल ज्ञान है तो हम कहेंगे वैसी की वैसी। जैसे शरीर जैसे हमने सुबह आईने में देखा और हाँ ऐसा दिख रहा है, अभी शाम को भी हाँ वैसा है, तो वही का वही है ना। अरे उसमें तो अनंत परमाणु नए आए और अनंत चले गए, हमारा क्षोभशम ज्ञान इतना जान कहाँ सकता है कि यहाँ शरीर में भी कितना परिवर्तन होता है। वही का वही रहने वाला तो मैं हूँ स्वयं जीव, और बाकी जो अन्य बातें हैं वो संयोग में आती जाती रहती है। यहाँ जो बात हो रही है कि जो छह द्रव्य है उसमें प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत सुनिश्चित पर्यायों का क्रम है। द्रव्य कहते ही उसी को है जिसकी पर्याय सुनिश्चित है, और उन पूरे पर्यायों के समूह को, गुणों के समूह को हम द्रव्य कहेंगे। यानी ये द्रव्य के स्वरूप में ही विद्यमान है कि उसकी पर्याय सुनिश्चित है। अब दूसरी बात है, प्रत्येक जो द्रव्य है उसको अपना स्वद्रव्य है। चार बातें कौन सी है प्रत्येक द्रव्य में जिसको हम स्वचतुष्टय कहते हैं? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। उसी की बात मैंने अभी की। प्रत्येक अपना द्रव्य तो अपने रूप से है ही, उसका अपना जो प्रदेश है, कितने प्रदेशी द्रव्य है उसको उसका स्वक्षेत्र कहेंगे। उसका काल यानी अनादि अनंत जो पर्यायों का क्रम उसको हम काल कहेंगे, और उसका भाव यानी उसके अनंत गुण उसको भाव कहेंगे। तो द्रव्य ऐसा फैला हुआ है कहाँ से कहाँ तक, अनादि से अनंत काल तक प्रत्येक द्रव्य। तो मेरा एक प्रश्न छोटा है आपको, एक द्रव्य में गुण ज्यादा है कि एक द्रव्य में, अभी एक द्रव्य में एक समय की एक पर्याय लेना सबकी मिलकर, एक कितनी पर्याय होगी अनादि से अनंत काल तक की। तो प्रश्न ऐसा है, एक द्रव्य में गुणों की संख्या ज्यादा है कि पर्यायों की संख्या ज्यादा है? पर्यायों की, एक समय में एक ही पर्याय लेना है सभी द्रव्य गुणों की मिलकर। हाँ तो प्रश्न क्या है, एक द्रव्य में गुणों की संख्या ज्यादा है क्या तीन काल की पर्यायों की संख्या ज्यादा है? अभी अभी तो पर्यायों की आवाज आ रही थी, अभी कुछ कुछ गुणों की आ रही होगी, तो निश्चित करना पड़ेगा। हाँ बोलो, किसके गुणों की, कारण भी बताना पड़ेगा। हाँ हाँ बात सही है, प्रत्येक द्रव्य कितना लंबा है, लंबाई ने कितना फैला है, तो जितनी तीन काल की पर्याय, क्यों प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक समय में एक एक पर्याय हम गिन रहे हैं, अनंत गुणों की मिलकर हम द्रव्य की पर्याय एक कहेंगे, तो प्रत्येक द्रव्य में पर्याय कितनी होगी जितने तीन काल के समय है। अब सुबह जो हमने बात देखी थी सर्वज्ञ का स्वरूप देखते हुए, तो जीव द्रव्य अनंत, उसके अनंत वर्ग करो तो उद्गल द्रव्य, उसके बाद नंबर आता है तीन काल के समयों का, यानी ये द्रव्य में अनादि अनंत इतनी पर्याय है, उससे अनंत गुणे आकाश द्रव्य में प्रदेश है, और उससे अनंत गुणे प्रत्येक द्रव्य में गुण है। तो इसका अर्थ क्या है, गुणों की संख्या अनंतानंत गुणे है, और पर्याय जितने तीन काल के समय है उतनी द्रव्य में पर्याय। अब यह हम देख रहे हैं कि हम भी भविष्य की बातें जान सकते कि नहीं जान सकते। आज कौन सा वार है? हाँ और कल सबने जान लिया, कल सूरज सुबह उगेगा ना, उसका सूर्योदय का समय भी हम निश्चित कह सकते हैं। शोभशम ज्ञानी हुए भी कब ग्रहण लगने वाला है, सूर्य ग्रहण कब है, चंद्र ग्रहण कब है, अभी आज सूर्योदय कितने बजे होगा, सूर्यास्त कितने बजे होगा, ये सब जान सकते कि नहीं जान सकते। हम डॉक्टर के पास जाते तो कहेगा यार घबराने की बात नहीं है, ये चार दिन में ठीक होने वाली बात है। उसने भविष्य को जाना कि नहीं जाना, तो हम आप जाने और केवल ज्ञानी भविष्य को नहीं जाने। आप कहेंगे हम अनुमान से जानते हैं, परंतु वो तो प्रत्यक्ष ज्ञानी है, उनके ज्ञान में कोई बाधा ही नहीं, ना उनके लिए कोई काल वो भूत है या भविष्य है इससे कोई बाधा नहीं आती, और ना ही क्षेत्र की बाधा आती है। ये सामने है पदार्थ या कुछ दूरवर्ती पदार्थ है वो सबको जानते हैं, सूक्ष्म अंतरित और दूरवर्ती सभी पदार्थों को प्रत्यक्ष जानते हैं, उन्हीं को हम केवल ज्ञान के। तो ये भविष्य को नहीं जानते ऐसी भ्रांति बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। अब दूसरी भ्रांति क्या है, 25 पृष्ठ पर लिखी है, वहां कहते कोई कहते तो सर्वज्ञ भगवान भविष्य को तो जानते हैं परंतु सशर्त जानते हैं। ये सशर्त क्या होता है, जैसे हम कहते ना बच्चों को कि जो अच्छी पढ़ाई करेगा वो अच्छे नंबर से पास होगा, ऐसे भगवान भी ऐसा जानते हैं कि जो ऐसा आत्मा में स्थिर हो जाएगा उसको सम्यक दर्शन हो जाएगा, जो जिसने ऐसा मुनिपद दे लिया उसकी इतने इतने निर्जरा हो जाएगी। क्या ऐसा है, क्या भगवान नक्की जानते हैं कि अभी तो ये मुनिराज है परंतु अभी तो ये मिथ्यात्म में जाएगा और फिर वहां से अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक एक इंद्रियों में घूम के आएगा फिर जाके मोक्ष जाने वाला, ऐसा जानेंगे कि यदि ये पुरुषार्थ करेगा तो मोक्ष जाएगा और नहीं जाएगा तो एक इंद्रियों में भटकेगा, ऐसा जानते हैं। ऐसे कहने वाले तो हम आप हैं। हम क्या कहते, अरे परिणामों की सुधा संभाल करना, क्यों, ये तो चरणानुयोग का कथन होता है, अरे अपने परिणामों को संभालो, कहेंगे ना। क्या कह सकते कि जो देखो अभी हमारा जयधोला का वाचन चल रहा है तो उसमें तो लिखा है असंख्यात बार संयमा संयम जिसने धारण किया, असंख्यात बार सम्यक तो धारण किया, असंख्यात बार अनंतानुबंधी की विषय योजना की, चार बार उपशम श्रेणी चढ़कर उतरा है, फिर भी ऐसा जीव सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त में चला गया और वहां पल्ले के असंख्यात वे भाग काल तक रहा, फिर उस वहां से निकला, फिर देव में गया और उसने 132 सागर तक वो सम्यक दृष्टि, दो बार 66 सागर, और फिर ऐसा जीव फिर मिथ्यात्व में चला गया और वो सारे असंख्यात वर्षों तक मिथ्यात्व में। तो ये बात डेफिनेटली कौन जान सकते हैं, हम तो कहेंगे ना ये तो समय दृष्टि हुआ, चलो अभी तो उसको मोक्ष भेज देंगे एकदम डायरेक्ट। परंतु देखो अनंत जीव ऐसे पड़े हैं जिनका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल चल रहा है, जो सभी जीव समास है ना एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सभी पर्यायों में ऐसे कितने ही जीव पड़े हैं असंख्यात कि जिन्होंने कभी ना कभी सम्यक तो प्राप्त किया है, कभी निगोद में कोई पड़ा है, कोई अन्य एकेंद्रियों में पड़ा है, कोई पंचेंद्रियों में लब्धि पर्याप्तकों में पड़ा है, कोई अपर्याप्त मनुष्यों में पड़ा है, कोई नारकी रूप से रहते हैं, जिन्होंने कभी पहले संयम भी प्राप्त किया, कभी उपशम श्रेणी चढ़ के भी उतरे हैं। आप कहेंगे आप हमें डरा रहे हैं, हम तो सम्यक तो प्राप्ति के लिए बहुत यहाँ आकुलित है और आप तो कह रहे इतना सारा करने के बाद भी निगोद में भेज दे रहे आप, कोई किसी को भेजता नहीं। परंतु ऐसा ही उन जीवों के पर्यायों का क्रम है, ये क्रम केवल ही भगवान जानते हैं, करते कुछ नहीं है। तो ये करना नियोग का पढ़ने के क्या फायदा है, हमें तो डर ही डर लगेगा ऐसा कह दे ना, तो इससे तो सर्वज्ञ की सिद्धि और अधिक पुष्टि होती, बलवान होती। तो ये तो ऐसे जो हम कहते हैं ये तो जिसको कहते सशर्त जानते ये भी बात सच नहीं है। अब तीसरे पॉइंट, कोई कहते कि उनकी प्रशंसा करने के लिए उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है या अतिशयोक्ति है, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे हमारे और आप में कोई थोड़ा बुद्धिमान है, कोई उससे भी बुद्धिमान है, कोई बहुत बुद्धिमान है, तो इनको ऐसे ही कह दिया कि नहीं ये तो सर्वज्ञ भगवान, ऐसी थोड़ी बातें होती हैं। तो सर्वज्ञ का तो सर्वांगीण स्वरूप हमने अंतर बाह्य स्वरूप देखा है, देखो उसके उत्तर में पढ़ेंगे हम, जो लोग सर्वज्ञ को सर्वज्ञ मानने को तैयार नहीं है उन्हें उनके उपदेश पर कैसे विश्वास हो सकता है। हम नमो अरिहंतानम कितने जाप जपे, हमने लाख एक जाप जपे, परंतु अरिहंत भगवान के स्वरूप के बारे में ऐसी हम भ्रांति कहते हैं। ये हम सर्वज्ञ के सर्वज्ञता पर लांछन लगाना चाहते हैं, यदि तो उसने अरिहंतों का नाम लेना नहीं लेना बराबर है, उल्टा तो उनको वो दूषण दे रहा है, उल्टा तो पाप का बंध कर रहा है। ऐसा भी कि नहीं, किसने देखा ये आलू प्याज में इतने अनंत जीव, किसने देखा? अरे जिसने देखा है उन्होंने तो बताया है, और फिर आप कहते किसने देखा है, यानी आपको सर्वज्ञतों के ऊपर अरिहंत सिद्धों के स्वरूप के बारे में आपकी निर्णय नहीं, आपका सर्वज्ञता को ही आपने नहीं माना है, तो आपने अरिहंत भगवान को भी नहीं माना। यही कहते जिंदगी भर नमोकार मंत्र बोलते आए, जिनेन्द्र भगवंतों की पूजन करते आए हैं, फिर भी सर्वज्ञ के स्वरूप संबंधी इस तरह का अज्ञान होना कहा, उनका अपमान करने जैसा है। जैसे कोई अपने माता पिता के पैर छूकर रोज उनकी आरती उतारे, तो ये पुत्र अच्छा के खोटा? सुबह होते ही क्या करता है, माता पिता के जाके पैर छूता है, आरती उतारता है, उनके आदर से उनके नमस्कार आदि करता है, और दिन भर क्या करता है, उन्होंने कही हुई एक भी बात नहीं मानता है, तो क्या कहेंगे हम, आज्ञाकारी पुत्र कहेंगे उनको? हम भी क्या करते हैं, कहते हैं सुबह भगवान की पूजा करते हैं, और करना भी चाहिए। हम भगवान को सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं, हाँ उनकी जयकार करते हैं, उनको सुनाते हैं, और भगवान की हम कितनी सुनते हैं? आपने सुना है द्विइंद्रिय जो जीव है ना, द्विइंद्रिय जीव बोल सकते कि नहीं बोल सकते, द्विइंद्रिय जीवों के भाषा है कि नहीं है, जिनके रसना इंद्रिय उनके भाषा भी होती है, इतना ख्याल रखो। वो जीव से बोलते कि नहीं वो बात अलग, परंतु जिनके यानी वचन है द्विइंद्रियों के है, सुन सकते हैं? कौन सी इंद्रिया है उनके, दो इंद्रिय जीवों के, एक स्पर्शन इंद्रिय और एक रसना इंद्रिय, तीन इंद्रिय जीवों के और एक घ्राण इंद्रिय एक्स्ट्रा है, चतुर इंद्रियों के चक्षु इंद्रिय एक्स्ट्रा है। ये तीनों जीव बोलते तो है पर सुनते नहीं है, एक इंद्रिय तो बोल नहीं सकता, तो ये कैसे है, बोलते हैं कुछ सुनते नहीं। हम भी क्या करते हैं, भगवान की जय बोलते हैं, उनकी कुछ सुनते नहीं, तो हम क्या हो गए, हम सुनना किसको कहते हैं? हमारे घर में छोटा बालक है, कोई मेहमान आते हैं तो हम कहते जा बेटा जरा पानी लेके आ, बालक वहीं पर खड़ा रहता है, ठीक है, अरे बेटा जा, मैंने कहा ना पानी लेके आ, मेहमान आए तो फिर वही खड़ा रहे, अरे सुना नहीं मैंने क्या बोला, जा पानी लेके आ, मैंने सुना ना पहली बार ऐसा बोला, दूसरी बार ऐसा बोला, तीसरी बार अभी डांट लिया, तो क्या उसने सुना? तो सुना कब कहेंगे, जब वैसा परिणमन होगा, उसने जाके पानी लाया तो हम कहने हाँ मेरा राजा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी सब सुनता है, तो क्या हम भगवान की सुनते हैं? ऐसा भगवान ने जो वस्तु का स्वरूप बताया है क्या हमने वैसा माना क्या नहीं माना, क्या उसके उपदेश पर हमने कभी गहराई से विचार किया? और वो सुनने से उनका कुछ होने वाला नहीं, उनका जो कुछ कल्याण होना है वो तो हो चुका है, उनकी अगर हम सुने तो हमारा अपना कल्याण होने वाला है, परंतु हम तो बस अभी आपकी मैंने आपकी नहीं बात कर रही, समाज में जो बात चल रही है, हम जो बचपन में करते आए हैं कि बस भगवान की आरती करना पूजा करना, वो बस जय जयकार बोलना, यात्रा में जाना, कुछ उपवास हो सके उतने उपवास करना, बस हो गया धर्म, हम बहुत धार्मिक कहलाते थे, तो क्या वो सचमुच धर्म है कि जो तत्व ज्ञान से हम सही स्वरूप समझेंगे तो धर्म होगा? ख्याल में आती है ना बात, तो यहाँ जो भ्रांतियां चल रही है, तो यहाँ कहते कि अतिशयोक्ति से करते हैं। अब चौथी भ्रांति, कोई कहते कि निमित्त ज्ञानियों के समान, ये निमित्त ज्ञानी नाम सुना है कभी? निमित्त ज्ञानी यानी कोई पृथ्वी है, आकाश है, और कुछ अन्य अन्य चीजों को देखकर वो यानी आगामी भविष्य में होने वाली बातों के वो कह सकते, उसको कहते हैं निमित्त ज्ञानी। ये निमित्त ज्ञान कौन सा ज्ञान है? मति श्रुता उदी मन परे केवल में से कौन सा ज्ञान है? शुद्ध ज्ञान है। तो निमित्त ज्ञानियों के समान अर्थात पृथ्वी, आकाश, मेघ, हवा, स्वप्न, हस्तरेखा, चेहरा आदि देखकर भविष्य संबंधी कुछ बातों का ज्ञान होने वाले जीवों के समान सर्वज्ञ भगवान भविष्य को विशेष रूप से जानते हैं, ऐसा कोई कहते हैं। जैसे निमित्त ज्ञानी भी भविष्य को जानते हैं, ऐसे सर्वज्ञ भी कुछ बातों को जानते हैं, ऐसा कहते हैं। सब कुछ नहीं जान सकते, ऐसा उनका कहना है। तो इन लोगों की मान्यता में सर्वज्ञ भगवान क्षोभसम ज्ञानियों में अधिक ज्ञान वाले हैं, यानी निमित्त ज्ञानियों से भी वो कुछ और अधिक जानते हैं, परंतु वो सब कुछ जानते हैं ऐसा स्वीकार करने के लिए ये जीव तैयार नहीं है। ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है। अब आगे भी पांचवा पॉइंट जो है, ये तो आपने इसके ऊपर बहुत बहस सुनी भी होगी, यहाँ बारंबार चर्चा भी चलती है, जो नियमसार गाथा के आधार से चलती है, भ्रांति भी और उसका उत्तर भी। कुछ लोग नियमसार गाथा 159 का आधार देकर कहते हैं, केवली भगवान पर को व्यवहार से जानते हैं, निश्चय से पर को जानते ही नहीं। सुना है ना आपने, इसकी चर्चा भी पता है आपको कि नहीं पता? इसका उत्तर तो मालूम है कि नहीं मालूम? मैं आपसे पूछ रही हूं, ये चर्चा आपने सुनी हुई, केवल ज्ञानी पर को जानता ही नहीं है कि नहीं? सुना? सुना है? उसका जवाब मालूम है आपको? नहीं मालूम? देखो सुनेंगे अभी। समय सार में उनका कहना क्या है, नियम सार में क्या लिखा है, केवली भगवान पर को जो जानते हैं ना, व्यवहार से जानते हैं। और समय सार में क्या लिखा है, व्यवहार अभूतार्थ है। इसलिए उन्होंने तर्क क्या किया, व्यवहार झूठा होता है और वो पर को जानते व्यवहार है, इसलिए पर को जानते ही नहीं। इस तर्क को क्या कहते हैं, कुतर्क। जैसे गधे को चार पैर है, आदमी को दो पैर है, इसलिए आदमी आधा गधा है। बराबर है कि नहीं बराबर? तो अपनी मति कल्पना से कोई कुतर्क करके इस सही जो जानकारी है, ज्ञान है, उसमें अपनी कल्पना से कुछ अलग अलग सोचना, कल्पना से हो, ऐसे तो ग्रंथों में कहीं नहीं आता है। कर्णान योग के ग्रंथों में भी व्यवहार से भी जानता है, निश्चय दोनों ही नयों से जानता है, नहीं जानने की बात ही नहीं है। ये समय ज्ञान चंद्रिका में है, ये ज्ञान श्रुत ज्ञान के उसमें है ना, जानता है इसलिए उसको वेत्ता कहा वगैरह, ये जो बातें हैं उसमें ये बातें आती हैं। देखो इसकी चर्चा करेंगे, देखो कि समय सार में व्यवहार को अभूतार्थ कहा, इसलिए केवली भगवान पर को जानते ही नहीं, मात्र स्व को ही जानते हैं, इस कारण वे सर्वज्ञ नहीं है, कथन मात्र सर्वज्ञ है ऐसा कहने वाले भी जीव है। इसे जरा स्पष्ट करके लिखना चाहती हूं, तुमने ना नियम सार पढ़ा और ना ही समय सार, और ऐसे ही नहीं पढ़ने वाले ही जीव इसके बारे में चर्चा करते हुए हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि सुनते हैं ना किसी न किसी से। इसलिए ग्रंथों के कथन को ठीक तरह से नए विवक्षा से समझना होगा, किस नए से कहां कौन सी बातें की है। एक ही आचार्य, ये तो अच्छी बात है, एक ही आचार्य समय सार में कुछ बात अलग लिख रहे हैं और प्रवचन सार में कुछ अलग बात। प्रवचन में सार में तो बताया जो राग रूप परिणमित होता है वो जीव राग है, क्रोध है, क्रोधी है, नहीं कहा क्रोध है, वो स्वयं क्रोध है। और समय सार में क्या लिखा है, ये तो राग से भिन्न है भगवान, आते राग के प्रदेश भिन्न है कहा। अच्छा हुआ एक ही आचार्य ने लिखा, दो आचार्य लिखते तो हमने भी उसके दो पंथ बना देते। क्यों? ये जो विवक्षावश नए अपेक्षा से जो बात जहां जो लिखी होती है उसको उसी संदर्भ में जानना अत्यंत जरूरी है। तो नियम सार में क्या लिखा है, देखो वहां लिखा है ना, जान दिपसदि सौवम व्यवहार नयेण केवली भगवम केवल नाणी जान दि पसदि नियमेण पाणम अर्थात व्यवहार ने से केवली भगवान सबको जानते हैं, देखते हैं, और निश्चय से केवली भगवान अपनी आत्मा को जानते हैं, देखते हैं। अब ये निश्चय और व्यवहार, ये श्रुत ज्ञान के भेद है। केवल ज्ञान में ये भेद होगे कि नहीं होगे? केवल ज्ञान में निश्चय व्यवहार भेद होगे कि नहीं होगे? क्यों नहीं? ये तो श्रुत ज्ञान के भेद, कथन पद्धति के भेद है। केवल ज्ञान में निश्चय व्यवहार भेद नहीं होता, तो केवल ज्ञान संबंधी हम जो कथन करेंगे वो संबंधी भेद हो गए। केवल ज्ञान का कथन हम कर रहे हैं तो उसमें ये कथन पद्धति में भेद है ना। निश्चय व्यवहार किसी वस्तु में तो होता ही नहीं है, उसके कथन पद्धति में भेद होता है। निश्चय और व्यवहार दो प्रकार से एक ही बात का कथन करते हैं। एक किसी बात को उसी को निश्चय की अपेक्षा से कथन करना और उसी को व्यवहार की अपेक्षा अन्य अपेक्षा से कथन करना। निश्चय वस्तु और व्यवहार वस्तु ऐसी दो वस्तुएं कभी नहीं होती, अपितु एक ही वस्तु संबंधी निरूपण या कथन दो प्रकार से होता है। ये तो बात आप सब लोग जानते हैं। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा और पढ़ाया भी होगा कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, उसका निरूपण कथन दो प्रकार से। अब ज्ञान तो सबको जानता है, हमने देखा ना, ज्ञान ज्ञान का स्वभाव क्या है? जानना। किसको जानेगा? स्व को भी और पर को भी। तो ज्ञान अपनी ज्ञान पर्याय को जानता है जो स्वयं स्व पर प्रकाशक है। देखो इसके लिए थोड़ा उदाहरण भी यहां मैंने दिया है, हम समझेंगे। गाड़ी या स्कूटर तो आपने चलाई होगी ना, या देखी भी होगी, गाड़ी में बैठी तो कार में बैठे तो होगे। तो ड्राइवर सामने देखकर चलाता है कि पीछे देखकर चलाता है गाड़ी? अब बोलो कहां देख के चलाता है? सामने देख। तो उसको पीछे से आए हुए ट्रैफिक समझ में आता है कि नहीं आता? उसको राइट टर्न लेना है तो पीछे से गाड़ी है कि नहीं देख कर जाता है कि बिना देख कर वो टर्न लेता है? देख कर जाता है। वो कहां देख रहा था? सामने देख रहा था, मिरर में देख रहा था। तो मिरर में देख रहा था कि पीछे से कोई वस्तु है कि नहीं। तो एक जन, हम दो जन बैठे थे कार में, एक जन कह रहे उसने पीछे देखा ही नहीं, और एक जन कहता है वो देखा उसने। तो कौन सही है? उसने मिरर में देख के निश्चित किया कि पीछे कोई है कि नहीं है। उसके जानता नहीं वो बात नहीं है, वो जान रहा है कि पीछे से कोई आता है या नहीं आता, उसने वो मिरर में देख के निश्चित किया। ऐसे यहां हम अपने ही ज्ञान पर्याय को जानते हैं, परंतु वो ज्ञान पर्याय में स्व और पर दोनों संबंधी ज्ञान हो रहा है। इसको कहते हैं स्व पर प्रकाशक। तो उसने पर को जाना कि नहीं जाना? जाना। अपनी ज्ञान पर्याय की ही शक्ति कितनी है, कैसी है? तो स्व पर प्रकाशक, प्रकाशन करना है नहीं जानना। ये अपनी ज्ञान की योग्यता है, ज्ञान की शक्ति है, और हर समय की ज्ञान की पर्याय स्व और पर दोनों को झलकाती है, दोनों को जान रही है, दोनों को दिखा रही है। हम उसमें अकेले पर को ही स्वीकार करते, स्व को स्वीकार नहीं करते, ये तो हमारी भूल है, ख्याल में। तो इस संबंधी में जो कोई चर्चा चलती है समाज में भी, वाद इसके ऊपर चलते हैं, तो उसमें यही समझना चाहिए कि हमें जो बताना है, हम हर समय ज्ञान की पर्याय को जान रहे हैं। अभी इस समय मैं इस माइक को जान रही हूं, तुम क्या कहेंगे? आप तो आपकी ज्ञान की पर्याय को जान रहे, फिर मैं इस पेन को जान रही हूं, तो हम कहेंगे हमारे ज्ञान की पर्याय को जान रही। परंतु ये जो ज्ञानाकार, जो ज्ञान की पर्याय है, तो वो किस वस्तु संबंधी था? तो माइक के संबंधी था, फिर पेन संबंधी था। इसको हम कैसा कथन करेंगे? तो कथन करने में इसकी अपेक्षा आई, तो हमने क्या कहा? ये व्यवहार से जान रहा है। अपेक्षा किस में आई? कथन में आई। जानने में कोई अपेक्षा नहीं, वो तो जान रहा है। तो इसी को हम माइक की तरफ से कहेंगे, तो ये माइक आकार हुआ ज्ञान, यानी ज्ञाकार हुआ। और ज्ञान की तरफ से कहेंगे तो उसी ज्ञान के पर्याय को हम ज्ञानाकार कहेंगे। तो कोई भिन्न भेद तो है ही नहीं, वस्तु तो वही की वही है। ज्ञान की पर्याय स्वयं की योग्यता से हो रही है। मैंने आपको कल पूछा भी था, आप जो जान रहे हैं वो पुस्तक के कारण जान रहे कि अपने ज्ञान से जान रहे हैं? तो हर एक जीव की, हर एक गुण की, हर पर्याय अपने स्व की योग्यता से स्वयं के कारण होती है। ये बात आएगी सब कारण कार्य रहस्य में। तो ये अगर हम स्वीकार नहीं करते, वैसे केवल ज्ञानी भी अपने स्वयं की योग्यता से पूरी दुनिया की सब वस्तुओं के सभी पर्यायों को जान रहे, तो उसमें आपका द्रव्य पराधीन कहाँ हुआ? तो हमारी जो ये सर्वज्ञ संबंधी जो भ्रांतियां चल रही है उसका हम यहां निराकरण कर सकते हैं। देखो, ये अमृत चंद्राचार्य ने लघु तत्व स्फोट नामक ग्रंथ, आपने उसका नाम सुना होगा, लघु तत्व स्फोट। हाँ, क्या है उसमें, उसका विषय वस्तु क्या है उसकी? हाँ, 24 तीर्थंकरों की स्तुति, संस्कृत में बहुत बढ़िया रचना है उसमें। तो देखो यहां क्या लिखते हुए कहते हैं 31 पृष्ठ पर, ये जो नया पैराग्राफ है उसकी चौथी पांचवी छठी लाइन में, तो उसमें वे कहते हैं द्रव्य में तो मात्र वर्तमान पर्याय ही विद्यमान होती है। क्यों? प्रकट अवस्था जो है, वर्तमान की जो है अवस्था, उसी को वर्तमान की जो प्रकट पर्याय कहेंगे। बाकी जो द्रव्य की जो पर्याय है वो किस रूप में विद्यमान है? जो बीत चुकी है पर्याय, उसका क्या हुआ? वो कहाँ निकल गई? द्रव्य से बाहर गई ना। देखो, ये जो द्रव्य गुण पर्याय है ना, उसका स्वरूप हमें अच्छी तरह से, सही तरह से हमें पहले में पहले समझना चाहिए। हमारे पास सोना है, वो सोना जो किसी भी गहने थे, हम उसको हमने तुलवा कर नए डिजाइन के गहने बनवाए, तो ये पूर्व अवस्था थी, जो हमारे पास हार था, अभी हमने उसके कंगन बनाए, तो हार अवस्था कहाँ चली गई? सोने के बाहर गई ना, कि सुनार के पास रह गई? सोनी के पास रही, और हमने सोनी को हार दिया, हार पर्याय उसको दे दी, और हमने कंगन पर्याय लाई ना, कहाँ गई वो हार पर्याय? वो सोना रूप से अभी विद्यमान है, सोने के रूप होगी ना, वो सोने में ही चली गई, उसकी वो पूर्व अवस्था रूप से नहीं रही। उसको हमें क्या कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में कहना है तो वो भी पारिणामिक भाव रूप से हो। जैसे आपने समुद्र तो देखा होगा, वहां क्या होता है, एक लहर आती है, उसके पीछे दूसरी लहर आती है, तीसरी लहर आती है, और फिर उस लहर का क्या हो जाता है समुद्र में, वो पानी रूप से, हम उसको समुद्र कहेंगे अभी, आगे उसको लहर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो समुद्र रूप से उसी में विलीन हो जाती है। ऐसे ही जो पर्याय बीत चुकी है वो अभी द्रव्य रूप से रहती है, और जो आने वाली पर्याय है वो अभी किस रूप से है? वो भी द्रव्य रूप से है। तो अभी वर्तमान में पर्याय एक ही चल रही ना, अभी द्रव्य की वर्तमान अवस्था है वो पर्याय रूप से, यानी द्रव्य अभी वर्तमान में उस पर्याय रूप से अवस्थित है। तो कहते हैं द्रव्य में तो मात्र वर्तमान पर्याय ही विद्यमान रहती है, भूत और भविष्य की पर्याय तो मात्र योग्यता रूप से ही होती। इस वाक्य का अर्थ ख्याल में आता है? द्रव्य में सोना अभी हमारे पास है, बंगड़ी रूप से विद्यमान है, इसकी जो पूर्व अवस्था थी और भविष्य में जो इसमें कोई अवस्थाएं बनेगी उसी सोने में ही विद्यमान है। किस रूप से? योग्यता रूप से है। प्रकट रूप से तो वर्तमान एक ही अवस्था है, परंतु वहां कहते हैं परंतु हे भगवान, आपके ज्ञान में ये पर्याय द्रव्य में तो वर्तमान पर्याय ही एकमात्र विद्यमान है, भूत और भविष्य की पर्याय तो योग्यता रूप धर्म के रूप में पड़ी है, परंतु हे भगवान आपके ज्ञान में ये तीनों काल की सभी पर्याय एक साथ विद्यमान है क्रम से नहीं। कुछ बात ख्याल में आती है? ये कोई पुद्गल परमाणु है, इसकी अभी वर्तमान में इस पेन रूप से अवस्था चल रही है, तो इस द्रव्य में तो ये अवस्था वर्तमान रूप से पड़ी है। इन पुद्गल परमाणुओं की, भूत और भविष्य की पर्याय इन परमाणुओं में योग्यता रूप से पड़ी है, परंतु इन सभी परमाणुओं की, भूत और भविष्य की सभी पर्याय केवल ज्ञान में वर्तमान में युगपत पड़ी है, क्योंकि उसको जानते हैं ना, उसमें क्या केवल ज्ञान में खचित है, ऐसा भी आता है ना शास्त्र में, उसका अर्थ क्या है? इन परमाणु, केवल इन परमाणुओं की बात नहीं है, विश्व के अनंतानंत द्रव्यों के अनंतानंत सभी पर्याय केवल ज्ञान की एक एक समय की पर्याय में सभी एक साथ विद्यमान है, एक साथ क्रम से हो गया, ऐसा नहीं। देखो हम टीवी सीरियल देखते हैं, आधा घंटे की सीरियल देखने के लिए कितना टाइम लगता है आपको? नहीं समझे? आधे घंटे की सीरियल आप देखते हो, कितने समय में देखते हो? आधे घंटे। अरे इतना सरल है ना उत्तर। और एट ए टाइम एक सीरियल देखते हैं, बीच बीच में आप रिमोट से बदल कर देख सकते हो, वरना एट ए टाइम तो एक सीरियल देखते हैं ना। और केवल अरे क्रम से देखते हैं। और केवल यानी ये सभी द्रव्यों की जो कोई सीरियल है अनादि अनंत पर्यायों की, वो एक समय में युगपत जानते हैं। भविष्य काल की भी पर्याय वर्तमानवत जान रहे वे, जैसे सामने विद्यमान है ऐसे जानते हैं। ख्याल में आती कुछ बातें? देखो हम सूक्ष्म ज्ञानी हैं तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते केवल ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि हम जान नहीं सकते एट ए टाइम सभी बातें, तो वो कैसे जानते होंगे? यही तो अंतर है ना। सूक्ष्म ज्ञान तो क्रमिक होता है, क्रम से जानते हैं, और केवल ज्ञानी युगपत सभी बातें एट ए टाइम जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं। सर्वज्ञ भगवान अक्रम से सारा जानते हैं, फिर भी पर्यायों को निश्चित क्रम को भी उसी समय में जान लेते। क्या कहना चाहते? अक्रम से जानते हैं ने सभी पर्याय, कौन सी? भूत और भविष्य की। अक्रम से ने एक साथ जानते हैं, तो एक साथ जानते हैं तो किस पर्याय के बाद कौन सी पर्याय है होगी, ये क्रम भी जानते कि नहीं जानते? अभी वर्तमान में वो महावीर जो तीर्थंकर हुए, उस जीव के अनादि अनंत पर्यायों को जान रहे हैं। बात सही है? किस क्रम से उन्होंने वो सारे एक एक भव पार किए, वो भी जानते कि नहीं जानते? सभी भव एक साथ जो जानते ही जानते हैं, वो कौन से भव के बाद कौन से भव उनका था और हुआ है, ये जान रहे कि नहीं जान रहे? इसको कहते हैं अक्रम से भी जानते हैं, एक साथ जानते हैं और उनका क्रम भी जानते हैं। ये दोनों बात उसमें हमें समझ में आवे ऐसी बात है। तो अभी तो इसके आगे हम ये क्रमबद्ध पर्याय आदि जो बात, ये तो हम सबसे अंत में जाके देखने वाले हैं। उसके पहले कारण और कार्य के संबंध में जो कोई अलग अलग जो सिद्धांत है जिनागम में, जैसे निमित्त उपादान की बात चलेगी, चार अभाव की बातें चलेगी, पांच समवायों की बातें चलेगी, षटकारक की बातें चलेगी, और भी कोई पर्याय संबंधी जो शक्तियाँ हैं उनकी भी बातें चलेंगी, और इन सभी बातों के द्वारा हम पर्याय क्यों होती है, कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है, कब होती है, और उसका कर्ता या नियामक कारण कौन है, क्या निमित्त से होता है क्या नहीं होता है, क्या निमित्त बदले जा सकते हैं, ये निमित्त उपादान क्या होता है, उसमें क्या क्या बातें बनती है, ये सभी चर्चा क्रम से हम करेंगे। इसी को हमने यहाँ कारण कार्य रहस्य नाम दिया है। आपके कोई प्रश्न है सर्वज्ञ के बारे में तो हम उसको देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सर्वज्ञ की सिद्धि, आप कहेंगे कि कारण और कार्य में सर्वज्ञ कहाँ आएंगे, बात ऐसी होती ना। तो जिनागम का अभ्यास करने के पहले सर्वज्ञ का निर्णय हमें करना था और वो आवश्यक है, इसलिए उसकी बात देख के अभी हम यहाँ से अपना विषय शुरू होगा। अभी तक जो हमने सर्वज्ञ के बारे में पढ़ा है, उसके बारे में आपके कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछना। जैसे काल वो वेद की बात भी आई थी ना, वेद के बारे में ये जो चर्चा चल रही है ना, बहुत से प्रश्न ऐसे आए हैं कि कोई कहते हैं कि जन्म के बाद वेद पलटता रहता है, ऐसे भी कहने वाले बहुत मिले, और उन्होंने ग्रंथों के आधार भी देने चाहे, परंतु मुझे किसी ने कोई ग्रंथ लाकर नहीं देखा, मैं भी देखना चाहती हूँ। क्योंकि एक बात सुनिश्चित समझो, जब ये वेदों की बात आती है, भाव वेद का अर्थ होता है जीव के जो परिणाम, द्रव्य वेद का अर्थ होता है शरीर का जो चिन्ह, जो हम कहेंगे ये स्त्री है या पुरुष है उसको कहेंगे द्रव्य वेद, और भाव वेद यानी उसके कौन से कर्म का उदय है, जैसे स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुसक वेद जीव के भाव भी है, उसी नाम के कर्म का उदय भी चलता है। जब उसकी उदीर्ण यानी तीव्र उदय होता है तो उस रूप कार्य होता है। परंतु सामान्य उदय में वैसे कोई उनके कार्य नहीं है। जो छोटा एक दिन का बच्चा भी है या गर्भ का बालक भी है, वेद का उदय तो सबको रहता है, परंतु वैसा कोई कार्य पाया नहीं जाता। मुनिराजों के भी वेद का उदय है, परंतु वैसा कोई उनके अन्य बाह्य में परिणामों की कोई खोट नहीं होती है। परंतु जो जन्म से वेद है, भाव वेद, जो स्त्री वेदी है या पुरुष वेदी है या नपुसक वेदी है, उस जन्म में उसका वही वेद कायम रहता है। चरम शरीरी हो तो नवे गुण स्थान के बाद वेदों का उदय का अभाव हो जाएगा, अपगत वेदी हो जाएगा। परंतु पहले कोई अन्य वेद था, बाद में अन्य वेद होता है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में कोई भ्रमणा हो तो दूर कर देना, और कोई प्रश्न है तो जरूर पूछना, परंतु ये कन्फ्यूजन मत रखना। ख्याल में आती है ये बात? बहुतों ने मुझसे की थी आज, इसलिए मैंने फिर इसका प्रश्न निकाला। अभी सर्वज्ञ के बारे में आपको कोई प्रश्न है, क्योंकि अपना अभी समय थोड़ा बचा है, तो जरूर पूछना, नहीं तो फिर हम आगामी विषय के बारे में सोचेंगे। प्रश्न रहित हो गए ना? हाँ, निशंक क्यों? अभी बढ़ेंगे हम। देखो, अभी हम कल से यहां चार अभावों की चर्चा करेंगे। चार अभावों का रेफरेंस, संदर्भ कहां, कौन से ग्रंथों में आया है, आपने तो सबने पढ़ा होगा। कहां आया है? हाँ, आप तो मीमांसा, हाँ, देवागम स्तोत्र में, वहां चार अभावों की चर्चा है। कौन कौन से चार अभावों के नाम कोई कहेगा पीछे? हाँ बोलो। हाँ, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव। ये भाव है क्या? अभाव है, अभाव है, क्योंकि प्राक प्लस अभाव, प्राग भाव हुआ है ना। आपको तो सारे संस्कृत के जानकार पंडित हो, आपको हम क्या सिखाएंगे। प्रध्वंसा भाव, प्रध्वंस प्लस अभाव, प्रध्वंसा भाव होता है। अन्योन्य अभाव उसको अन्योन्या भाव कहते हैं, और अत्यंत अभाव उसको अत्यंता भाव कहते हैं। तो जो है ही नहीं उसको क्या सीखना, अभाव है ना। तो अभाव है क्या नहीं है, पहले ये तो निश्चित करेंगे। क्या कहते हैं आप, अभाव की सत्ता है क्या? अभाव क्या अभाव है? हाँ, अभाव की सत्ता है, और हम उसकी चर्चा करेंगे। हमें तो अभावों को जानने से दुख होता है कि नहीं? क्या करें, मेरे नौकरी नहीं है, नौकरी का अभाव है। कोई कहता है मेरे पास पैसे का अभाव है, कोई कहता है मेरे लिए रहने के लिए रूम नहीं है, रूम का अभाव है। कोई कहता है मेरी शादी हुई पर बच्चा नहीं हुआ, बच्चे का अभाव है। तो अभावों को जान जान कर हम रोते रहते हैं, क्यों? अब यहाँ तो अभावों को जान जान कर खुश हो जाएंगे, क्यों? जिनागम का प्रत्येक सिद्धांत जानकर उसके द्वारा हम अपने आप को कैसे पहचाने, उसकी बात हम स्वीकार करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, उसको समझनी चाहिए। और जब अपने को समझने जाते हैं तो आनंद ही आनंद है। तो ये अभावों को जानकर उसमें हमारा क्या फायदा है, क्यों समझना है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको नहीं समझेंगे तो क्या होगा, समझेंगे तो क्या फायदा होगा, ये सारी चर्चा हम कल सुबह से शुरू करेंगे। अभी यहीं रुकते हैं। बोलो 2400 भगवान की।